आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश मोहब्बतें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका और आइए आज सुनते हैं सहबा जाफरी की लिखी कहानी न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं।
क्या कह रही हो, आखिरकार ये हो गया?
नताल्या इस पुरकशिश अंदाज में चिल्लाई कि एक लम्हे को वे सब भूल गए कि वे लोग एक बंकर में छिपे हैं और मौत मुसलसल उनकी तलाश में है। याकोव की हिप पॉकेट में एक छोटा सा चॉकलेट का बना कपकेक रखा था। दौड़ते हुए जाने क्या सोचकर उसने उसे उठा लिया था। उस नन्हे केक के आखिरी टुकड़े के भी तीन और टुकड़े करके उसने सबकी तरफ बढ़ाए। डेविड ने वोदका के चंद बचे खुचे कतरे गले में उड़ेल गला तर कर बोतल आगे को बढ़ाई। गोया की मौत के डर से घुटे हुए इन तपिश अंगेज दिनों में भी जिंदगी का इस्तकबाल कर रहे हों। एंड्रेला ने अपनी नाजुक हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़कर गर्मी हासिल करने की कोशिश की और चट्टान की तरह सीधी होकर थोड़े से शक का इजहार किया। क्या जाने ये खबर झूठ हो, आखिर ऐसे मातम अंगेज माहौल में ऐना का इवान से वेडलॉक हो जाना हैरत भरी बात नहीं तो और क्या है। सच, मौत जब सराहने खड़ी हो जिंदगी पर बेसाख्ता प्यार आने लगता है। अभी तक तो उन्हें बस फिक्रें खाए जा रही थी। बेतहाशा भगदड़, आगजनी और बम धमाकों के बीच भागते भागते उनके जिस्मों से थकन और उनके चेहरों से नहुसत टपकने लगी थी और अचानक इस खबर ने उन्हें फिर से उनके शहर लिसी चंक्स की बटरकप और हॉलीहॉक्स के कच्चे हरे शगुफों से सजी बालकनी में पहुंचा दिया था, जिस शहर में वे एक साथ बचपन बिता जवान हुए थे। चांदनी रातों में तारों की शम्में बुझा, चांदी के शमादानों में रंग बिरंगी रोशनियां जलाए वे अपने टेरेस गार्डन पर पार्टियां किया करते थे। अंगूरों की बेलों से छन कर आती रोशनियों में सुनहरे घेरदार फ्रॉक पहनी अपनी पार्टनर्स की नाजुक कमर में एहतियात से हाथ डाले रक्स किया करते थे। वोदका के ग्लासों के आपस में टकराने से एक नशीला खुमार कोहरे के साथ निकल उनके इर्द गिर्द फैल जाया करता था। इवान अपने पियानो पर द बाउंडलेस एक्सपेंसेस ऑफ द सी की महीन धुन छेड़ देता था और ऐना के कदम जिंदगी की मौज के साथ हरकत करने लगते थे। इतने पर भी उन्हें जिंदगी पर एतबार नहीं था। मोहब्बत जिंदगी का हासिल थी, पर शादी चांदनी रात में सफेद दीवार पर पड़ती काली परछाई सी बेहद बदमजा चीज। अक्सर देर रात जब वे दोस्तों के साथ सिनेमा देख लौट रहे होते, बुजुर्ग उन्हें मशवरा देते थे, तुम दोनों ब्याह क्यों नहीं कर लेते? जवाब में दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। इवान अपनी जेब से सिगरेट का खाली डब्बा निकाल हवा में उछाल देता, गोया की शादी की अहमियत उनके लिए इस सिगरेट के खाली डब्बे से ज्यादा कुछ भी न थी। जिस अस्पताल में ऐना नर्स थी उसके ठीक पास इवान का ऑफिस था, वही ऑफिस कि जिसकी घड़ी के कांटों के पांच बजाते ही धड़कते हुए कदमों से इवान ऐना से मिलने जा पहुंचता था और एक इंतहाई सर्द सुबह कोहरे से ढकी दोनेत्स नदी के पूर्वी सिरे से आते बम के धमाके ने जिन्हें अस्पताल के साथ ही तबाह कर दिया था, अब उस जगह मोहब्बत और इंसानियत की कोई निशानी बाकी नहीं। हमें जिंदगी पर कोई एतबार नहीं, इसी से शादी जैसी किसी रस्म में हम दोनों का भरोसा नहीं। जिस कैफे हाउस में बैठकर इवान ने ऐना का हाथ अपने हाथ में लेकर एक फलसफा गढ़ा था, वो भी बमबारी से चूर चूर कुछ यूं पड़ा था कि दहशत के मारे आंखें फटी की फटी रह जाएं। इसी के दाहिने बाजू बने एक छोटे से पार्क में पहली दफा ऐना ने इवान को मां बनने की खबर दी थी। बावजूद इसके कि कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, उन्होंने अपनी पहली बेटी ओक्साना को जन्म देने का फैसला किया था और उसके कुछ सालों बाद एलेक्जे उनका दूसरा बेटा। चूंकि उनके दरमियान शादी का रिश्ता नहीं था, इसी वजह से बच्चे उन्हें मॉम डैड की बजाय उनका नाम लेकर बुलाते थे। ऐसा नहीं था कि वो अब भी शादी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, पर अब बहुत से मसले थे। वो महंगा घर और बड़ी सी गाड़ी अफोर्ड कर लेने के बाद शादी करना चाहते थे,
उनका ख्वाब था कि चांद के शामियाने तले महकते चहकते पुरसरार माहौल में वो एक दूसरे के हों। उनकी शादी की दावत दोनेत्स नदी पर बने शहर के सबसे महंगे मैरिज लाउंज में हो और ऐसी हो कि रंग और नूर से नदी का पानी झिलमिला उठे। माहौल बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग। टीवी पर उनकी शादी की खबर आ रही थी। बम धमाकों में ऐना ने अपने दोनों बच्चे और अपने दोनों पैर खो दिए थे। वेडिंग डांस की रस्म के वक्त इवान ने उसे गोदी में उठा रखा था और उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। नताल्या ने बंकर में लगे टेलीविजन सेट से उकताकर एक गहरी सांस ली और अपने इर्द गिर्द नजर डाली। उसके दोनों तरफ थके थकाए मर्द, औरतें और बच्चे लाशों की सूरत थके पड़े सो रहे थे। उनकी छातियां धौंकनी सी चल रही थीं, उनकी टांगें नींद में भी लरज रही थीं। कुछ औरतें उम्मीद से थीं, शायद उनके बच्चे सड़क पर ही हों और भूख प्यास से तड़पते सड़क पर ही मर जाएं। सामने की तरफ बेहद आलीशान मकानों के खंडहर खड़े थे, जो औलादे आदम को अपने ही इजाद किए हथियारों से नहीं बचा पाए थे। माहौल बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। और आखिरकार इवान और ऐना को शादी जैसी रस्म पर एतबार आ ही गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज़।